एमक्यूएम में आप आ तो सकते हैं, आप जा नहीं सकते। ये एक बड़ा टिपिकल वहां मुहावरा होता था जब 2090s जब हम छोटे होते थे, बड़े भी हो गए, तो ये कहा जाता था कि एक बार एमक्यूएम में जो आ गया वो बस कैसे जा सकता है वो आपको मालूम है, वो मैं नहीं एयर पे बताऊंगा, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। इसी तरीके से जनाब 770 अलहमदुल्ला यहां जो चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, जो मैनेजमेंट है, माजिद भाई हैं, अरफा पाए, तो आप चाहते हैं कि मुझे फायर कर दिया जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक के बाद फिर एक दो स्पॉन्सर्स लेंगे और फिर शाजिद जी हमारे साथ खबरों में शामिल होंगी। हमारा नंबर 416-620-1778।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-7600-241-649-0241।
ਦਸ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨੀ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਆਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾਏ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ, 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com QTL ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ontario.ca/builds ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा, 647-290-3773।
ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਈਡਵਾਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੋਲਰ, ਵਾਕਰ ਜਾਂ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/bylaw ਤੇ ਜਾਓ।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एम्बिशंस मेड रियल।
ਕਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੈਸਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਲਨ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੌਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਪੀਅਰ ਪਾਲੀਐਵ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ, ਲਿਬਰਲ, NDP ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਅਰ ਪਾਲੀਐਵ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਲਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ BramptonFire.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ
6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा, वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए, 416-786-6000, 416-786-6000।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स, मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैक्लॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो, 905-607-5000, 905-607-5000।
ویلکم بیک تمام سامعین جو میں 770 AM ڈائل پر سن رہے ہیں پروگرام ساز و آواز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور آپ کا ہمارا ساتھ آج تقریباً 6:30 بجے تک رہے گا۔ اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ کھٹی میٹھی خبریں لے کے شازیہ ملک صاحبہ پروگرام میں شامل ہو جائیں گی۔ جناب، آپ ہمارے ساتھ اگر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو 416-620-1778۔ اس کے علاوہ آپ کہیں ایسی جگہ گزر رہے ہیں جہاں آپ کو ریڈیو صحیح نہیں سنائی دے رہا तो एक नंबर डायल कीजिए 6478724900 पर डायल करके आप क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी रेडियो की सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां भी आप रेडियो सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम ही एडवर्टाइजर्स के नंबर आपको हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएगी। चलिए जनाब, कुछ स्पोर्ट्स की खबरें हेडलाइन शामिल कर लेते हैं। डिटेल खबरें तो आपको शाजिया मलिक साहिबा ही देंगी। वुमेन्स T20 क्रिकेट जो है वो हो रहा है और दुबई में आज जो है वो मैच खेला गया, बल्कि आज शारजा में मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम का और न्यूजीलैंड क्रिकेट वुमेन्स टीम के दरमियान, और ये मैच आज ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम ने 60 रन से जीत लिया। कल 9 अक्टूबर कल मैच खेला जाएगा, 11th मैच होगा ग्रुप बी का जो दुबई में खेला जाएगा आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, जहां स्कॉटलैंड की वुमेन टीम खेलेगी साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम से। इसके अलावा 10 तारीख को बांग्लादेश और वेस्टइंडीज का मैच है। 11 अक्टूबर फ्राइडे, जनाब फ्राइडे को मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। जनाब ये 14th मैच होगा ग्रुप ए का, दुबई में खेला जाएगा फ्राइडे 11th अक्टूबर को। तो देखते हैं जी पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम है वो क्या परफॉर्म करती है। ग्रुप ए की तरफ, पॉइंट टेबल की तरफ चलते हैं, तो ग्रुप ए में वुमेन्स टीम के ग्रुप ए में इस वक्त लीड ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। उन्होंने जो है वो 2 मैचेस खेले और उनके 4 पॉइंट्स हैं। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे, हालांकि पाकिस्तान आपने देखा था कि वो संडे के मैच में इंडिया से हार गया था, लेकिन पॉइंट टेबल पर अभी पाकिस्तान नंबर 2 पे है। उन्होंने 2 मैच खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है और इनके 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनका रन रेट जो है वो इंडिया के से जो है वो, क्योंकि इंडिया ने भी 2 मैच खेले हैं 1 जीता 1 हारा है, लेकिन इंडियन टीम का जो रन रेट है वो -1.2 है, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वुमेन्स क्रिकेट टीम का जो रन रेट है सेम पोजीशन पे 0.5। तो हमारा वुमेन्स क्रिकेट टीम का रन रेट जो है वो पॉजिटिव में, जिसकी वजह से हम सेकंड पोजीशन पे ग्रुप ए में। थर्ड पोजीशन पे न्यूजीलैंड की टीम है, फोर्थ पे इंडिया है और फिफ्थ पोजीशन पर श्रीलंकन वुमेन्स टीम है। अगर ग्रुप बी की बात करते हैं, ग्रुप बी में नंबर 1 लीड कर रहे हैं, 2 मैच खेले हैं और दोनों जीत के 4 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड वुमेन्स टीम नंबर 1 है। वेस्टइंडीज वुमेन्स टीम जो है सेकंड नंबर पे, इन्होंने 2 मैच खेले हैं 1 जीता है 1 हारा है, इनके 2 पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने भी 2 मैच खेल लिए हैं, 1 जीते हैं 1 हारा है, और बांग्लादेश की वुमेन्स टीम ने भी 1 मैच खेला है 1 हारा है और 1 जीता है। स्कॉटलैंड की टीम ग्रुप बी के बिल्कुल बॉटम पे, इन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही मैच स्कॉटलैंड वुमेन्स टीम हार गई है, तो वो अब 5वें नंबर पर ग्रुप बी में है। तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें बढ़ती जाएंगी, तो हम आपको और स्पोर्ट्स की खबरें भी देते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैं आपको बता चुका था कि पाकिस्तान टीम ने जो है वो उनको एक आउट कर लिया है 96 रन पे, और पाकिस्तान की पूरी टीम 556 रन बनाकर आउट हो गई थी। आज डे 2 के एंड पर इंग्लैंड की टीम 96 पर 1 विकेट आउट थी। चलिए जनाब, एक और गाना प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और फिर हम आपको खबरों की तरफ भी लेकर चलेंगे। हमने कोशिश की कि नासिर शाह ओपन माइक कैफे, जनाब अगर आप भी लजीज खाना खाने जाना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए ओपन माइक कैफे। और जैसा कि नासिर शाह अक्सर आके बताते हैं कि जनाब अगर आपको खाना पसंद ना आए तो जनाब वो कहते हैं कि जी पैसे आपके वापस हो जाएंगे। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए ओपन माइक कैफे, ये मिसिसागा में ही है, तो अगर आप वहां जाएं और साजो आवाज का अगर आप रेफरेंस देते हैं तो आपको काफी वहां डिस्काउंट भी मिल जाएगा। शर्त यह है कि आपने ओपन माइक कैफे एक बार जरूर विजिट करना है। चलिए जनाब, प्रोग्राम में गाना शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-620-1778। क्या देखा
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो। 905-607-5000, 905-607-5000।
अरे खैरियत तो है, सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहाँ की तैयारी है?
हमारी पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव हो रही है, समझ नहीं आ रहा किस तरह से ये मूविंग होगी।
आप परेशान ना हो, आपकी मूविंग का सिर्फ एक ही हल है, 786 मूविंग प्लस।
अच्छा, वो कैसे?
786 मूविंग प्लस वाले अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस, स्टोरेज और कमर्शियल मूविंग में स्पेशलाइज करते हैं। मूविंग एंड डिलीवरी, पैकिंग एंड अनपैकिंग, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस, 24 आवर सर्विस, 7 डेज अ वीक, आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी, फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए। 416-786-6000, 416-786-6000।
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा, 416-894-5872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ, 416-894-5872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों।
वेलकम बैक तमाम सामाईन, एक बार फिर आप लोगों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और जनाब आप लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने आ गई हैं और खट्टी मीठी खबरें लेकर अपना स्नैपचैट पे एक तस्वीर डालकर, इंस्टा पे अपनी तस्वीर डाल के जाते वक्त चेक करती हैं 4 लाइक्स, तो पांचवा ढूंढ रहे हैं बंदा। मैंने बहुत कोशिश की, मैं पांचवें में शामिल नहीं हो पा रहा हूं, मैं तीसरे में हूं, तो 5 लोग हम ढूंढ रहे हैं और आ जाए ऐसा बंदा जो 5वां बंदा बन जाए और वो तस्वीर को लाइक कर ले और शेयर भी कर ले, तो जनाब उसको भी हम कहीं ना कहीं लॉटरी में डाल ही देंगे। नहीं जनाब, इनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, पूरा टोरंटो इनकी जो गर्म जो खबरें सुना देती ना, बस बंदा जाके बीवी को तड़ 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 सुनाता है साउंड इफेक्ट के साथ। नहीं जनाब ऐसा ना करें, मुझे फायर करा देंगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, म्यूजिक मैंने चला दी है, शाजिया मलिक साहिबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS कैसे हो?
वैसे
ही। बस इसका मतलब है ना, तुम्हारे पे दवाई का असर हो रहा है ना मेरे पे हो रहा है। हमको चाहिए पाकिस्तान की कड़क किस्म की।
मैंने दवाई खाना ही छोड़ दिया। मैं दवाइयां खाना ही छोड़ दी
क्योंकि ये कनाडा की
दवाइयां, फार्मेसी के पैसे अलग
हैं। बिल्कुल अलग,
वो जो प्रिस्क्रिप्शन एक तो पैसे को $20 $15 हर बंदा वो चार्ज कर लेता है, फिर दवाई के अलग पैसे
अलग है।
कितना मतलब जुल्म
है। खर्चा
मतलब
दवाई ना खाओ क्योंकि असर तो कोई हो नहीं रहा है। ठीक है
असर नहीं।
अच्छा जी आज हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हालांकि आमिर की पूरी कोशिश है कि टाइम पूरा वेस्ट कर दिया जाए, लेकिन आज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आज ये जो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है, जैसे कि अभी आमिर साहब ने भी जिक्र किया कि गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं आ जाते हैं, क्या चक्कर क्या है। खैर हमने कल आपको बताया था अचानक से असेंबली में वो हाजिर हो गए थे, लेकिन ये जो डी चौक पे इतना जबरदस्त धरना था इसको गैप किसने किया, यानी कि लोगों को तितर बितर किसने किया, इसके ऊपर एक रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन एक अंदर की स्टोरी है जो आज हम आपको सुनाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी खबरें जो है वो शुरू कर लें। ठीक है जी, तो दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय सज्जाद अली लाइव इन कॉन्सर्ट। ये इनका कॉन्सर्ट आने वाला है 26 अक्टूबर को सैटरडे के दिन द मीटिंग हाउस ओकविल में। और अगर आप जाके इस लिविंग लेजेंड के गाने सुनना चाहते हैं तो आप मोज शेख साहब को कॉल करें, इनका नंबर है 4168181184। और जनाब राजा बादशाह जिस तरह उन्होंने आमिर के लंबे पैसे बचाए हैं आपके भी बचा सकते हैं, आप प्लीज जो है जरूर राजा बादशाह जी के पास जाएं। इनका नंबर है 6472903773। ये ऑल स्टेट के साथ हैं और आपके ढेरों पैसे बचाएंगे। और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, इधर अगर आपको बहुत जबरदस्त एक तो खाने भी खाने हैं और आपको एंजॉय का मजा भी लेना है और गोल्फ भी खेलना है तो आप चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल में जाएं। ये जो है 2935 ड्रू रोड मिसिसागा में लोकेटेड है। इनका नंबर है 9054588888। ठीक है जी। अच्छा जनाब अब हम चलते हैं अपनी जरा खबरों की तरफ। कल हमने आपको बताया था कि अक्टूबर 7 था और उसका जो अटैक की सेलिब्रेशन थी हमास की, उसकी ऊपर काफी यहां पे जलसे जुलूस निकले थे। कल ही पार्लियामेंट के अंदर जो है काफी सारे फायरवर्क्स वहां पे भी देखे गए। ट्रूडो साहब और पीए पॉलियर साहब के साथ फिर से उनके बीच में ठन गई और जो पीए पॉलियर साहब हैं उन्होंने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया लिबरल गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि आपकी आइडियोलॉजी ने लोगों को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड एथनिसिटी और आपकी वजह से हेट्रेड यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो कंट्रोवर्सीज हैं आपने क्रिएट किए हैं, जैसे कि बिरजू दत्तानी को चीफ कमिश्नर ऑफ कनेडियन हैक ह्यूमन राइट्स कमीशन लगा दिया है और इसी तरह आपने एक जो फेडरल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसे ग्रुप को दिया है जो के जिनको के एक्यूज किया गया था एंटी सेमेटिसिज्म के लिए, क्योंकि वो इस तरह की बातें एक्सपेक्ट करते थे। तो काफी सारी उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि लोगों को जो है इस वक्त चेंज चाहिए है और इसके अलावा अगर मेरी पार्टी जीती तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजीज है उर्वा, इसके फंडिंग जो है मैं सबसे पहले बंद करूंगा। बहुत अच्छा काम करेंगे सर आप। और उसके बाद जी ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके फंड्स भी बंद करूंगा जो एंटी सेमेटिसिज्म बढ़ाते हैं। वेरी गुड, अनदर गुड जॉब, शाबाश, वेरी गुड। और वो कहते हैं जी ज्यूज जो है यहां पे बड़ा अनसेफ फील करते हैं उस कंट्री में जिसके साथ हम बड़ी मोहब्बत करते थे। तो सर आप जो है चूंकि अभी एंटी इनकम्बेंसी वो वेव चली हुई है तो ट्रूडो साहब शायद नहीं जीतेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है पीए पॉलियर साहब कि ये पॉलिसीज जो है इनको जनता बहुत पसंद करेगी, जाहिर है कि फिर इसका भी बैकलैश आएगा। तो आप ट्रूडो साहब से ही सीख लो थोड़ा कि उनकी कुछ पॉलिसीज पे लोग खफा हैं तो आपकी पॉलिसीज पे भी खफा हो सकते हैं ना, तो आप ऐसी बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जो वर्क हैं उनके भी अगर आप फंड्स रोकेंगे तो कैसे चलेगा। अच्छा जी इससे पहले जो है ट्रूडो साहब बात कर चुके थे, उन्होंने बहुत ज्यादा थैंक यू बोला सारे एमपीज को, उन्होंने कहा आज अपने अपनी पार्टी को साइड पे रख के इस चीज के लिए हम इधर जमा हुए हैं और ये जो बर्बेरिक अटैक हुआ था अक्टूबर 7 का इसने लोगों के लिए बड़ी एग्नाइजिंग मेमोरीज हैं और वो लोग जो है हर रोज ये नाइटमेयर जो है वो जीते हैं और खासतौर पर जब आपके स्कूलों के और सिनागॉग्स के जब जो शीशे हैं वो तोड़े जाते हैं या जो है हमास और हिजबुल्ला के जो फ्लैग्स लहराए जाते हैं और एंटी सेमेटिक नारे लगाए जाते हैं हमारे सिटीज में, तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, हम बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते हैं और हमारे मुल्क के अंदर हेट की कोई भी जगह नहीं है। इसके साथ साथ आइडो मोएद जो है इसराइल के अम्बेसडर टू कैनेडा, उन्होंने वैसे कैनेडा की तारीफ की, उन्होंने कहा कि इसराइल के आप दोस्त हैं, हालांकि उन्होंने लिबरल गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के ऊपर जो एतराज किया। उन्होंने कहा जी कि आपने जो भी स्टॉप किया है जो सर्टन मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू इसराइल वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने लिबरल पार्टी ने जो ये जो जो है इसके अलावा जो स्टेटहुड पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का मोशन लाया था उसके ऊपर भी एतराज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई आपकी हम तारीफ जरूर करते हैं कि यू हैव बीन अ फ्रेंड ऑफ इसराइल। इस मौके पे एमपीज जो थे उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में खामोशी का एक मोमेंट जो है वो गुजारा था और फिर उसके बाद एक यूनानिमस इन्होंने मोशन जो थी पास की थी जिसके के अंदर अक्टूबर 7 के अटैक को कंडेम किया एंड दे शोड सपोर्ट फॉर विक्टिम्स एंड फैमिलीज, यानी कि दुनिया के ऊपर जो कहते हैं ना, वो एक सेंटेंस है कि अखां ते पट्टियां बनियां हैं, अखियां ते पट्टियां बनियां हुई हैं सही मान्या दे विच, इंक्लूडिंग साडा कनेडा। यानी पिछले 70 ईयर से वही बात हम आज फिर दोहरा रहे हैं कि पैलेस्टाइन एक कंट्री था, उनके मुल्क में ये घुसपैठिए जो हैं ये घुस के अपना उसके ऊपर कब्जा किया, उनकी पूरी एक नस्ल जो है पिछले 70 ईयर्स में खत्म कर दी है पैलेस्टीनियंस की, और विक्टिम भी इसराइल है, और सारी दुनिया की हमदर्दियां भी उसके साथ हैं। और जो पैलेस्टीनियंस जिनका घर है अगर वो कोई थोड़ा सा रेजिस्टेंस कर देते हैं तो वो जी टेररिस्ट हैं भाई, क्या बात है। दुनिया के ह्यूमन राइट्स को सलाम है भाई, सलाम है, वाह वाह क्या बात है, खास तौर पे यूरोपियंस के, खास तौर पे हमारा जो अंकल सैम है जो हमारे लेबरहुड में बैठा उसको। एक नई रिपोर्ट आई है जी, और इसके मुताबिक जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं जो कि ट्रंप साहब जिस तरह की लाना चाहते हैं वो कनाडा को काफी डैमेज कर सकती हैं। एक कैनेडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट आई है और उसके अंदर उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है ट्रेवर टोम ने, और ये जो है इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं कैलगरी यूनिवर्सिटी में, और वो कहते हैं जी कि ये जो ट्रेड के जो टाइज हैं यूएस और कनाडा के बीच में इसके अंदर काफी मुश्किलें आ सकती हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये जो अब बिजनेस ऑफिशियल्स दोनों साइड के ही हैं, डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी, वो अब इंश्योर कर रहे हैं कि कनाडा जो भी कोई नवंबर का आउटकम होएगा उसके अंदर उसके लिए तैयार रहे। जो विनर होएगा वो रिव्यू करेगा कनाडा यूएस मेक्सिको अग्रीमेंट को इन 2026। कमला हैरिस जो है उनके बारे में तो यही ख्याल किया जा रहा है कि वो बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन का पैथ जो है फॉलो करेंगी। उन्होंने अभी बड़ा अपोज किया था नेफ्टा को रिप्लेस करने का, और उन्होंने कहा था कि ये जो निगोसिएशंस हैं ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, विच वर अंडर निगोसिएशन अंडर जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और उन्होंने कहा था जी कि ये जो है मेजर ऑटो कंपनीज जो हैं वो आउटसोर्स करती हैं अमेरिकन जॉब्स, तो ये भी लेकिन इतनी जो है वो ठीक नहीं है। ट्रंप साहब जो है उन्होंने तो ये आते कहा है कि मैं तो जी आते सारी 10% अक्रॉस बोर्ड टैरिफ्स लगा दूंगा ऑन इम्पोर्ट्स इन माय सेकंड टर्म। तो अब ये दोनों में से कौन आता है और ये पॉलिसीज जो है कैसे चलती हैं उसके लिए लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, और वो कहते हैं जी ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो हैं ये बिल्कुल भी सीख नहीं है। आज आपने देखा ही होगा कि गूगल के बारे में भी कहा गया है अमरीका में कि भाई आप अपना पॉलिसी थोड़ा खोलो और दूसरी जो छोटी कंपनीज हैं उनको भी जरा आने दो। कनाडा के लिए एक बड़ी खुशी की खबर है कि जेफरी हिंटन यूके ब्रिटिश कैनेडियन हैं और रिसर्चर हैं जिनको के कहा जाता है गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने जीता है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। इन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर गुजारा है, और इनको अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी रिसर्चर जॉन हॉपफील्ड, जिनका के काम जो है जिसके के बारे में कहा गया है कि दैट अलाउड मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स। हिंटन जो है उनसे जब रब्ता किया नोबेल कमेटी ने फोन के ऊपर फ्रॉम रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, उन्होंने कहा जी मैं बड़ा सरप्राइज हो गया और मैं तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एलन मून्स जो कि कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने कहा जी इन दोनों को हमने इसलिए चुना है कि इन्होंने की कॉन्सेप्ट्स दिए हैं फॉर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स टू डिजाइन आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स जो कि फंक्शन करते हैं एज एसोसिएट मेमोरीज, और बहुत सारा लार्ज डाटा जो है उसका पैटर्न फाइंड करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो गुड न्यूज फॉर कनाडा। पुलिस जो है यहां पे टोरंटो के उसमें उन्होंने कहा है जी कि डजन्स ऑफ स्टोलन व्हीकल्स जो हैं उन्होंने रिकवर किए हैं, और इसके साथ चार लोगों को भी उन्होंने कस्टडी में लिया है फॉर ऑटो थेफ्ट फायर आर्म इन्वेस्टिगेशन इन टोरंटो ईस्ट एंड। उन्होंने कहा जी कि ऑफिसर्स ने ये जो रिकवर किए हैं ये सारे के सारे स्टोलन व्हीकल्स इन नीलसन और एल्समेर रोड्स के ऊपर इन जुलाई 2024। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा जी कि जो ऑफिसर्स थे फ्रॉम 43 डिवीजन उन्होंने नोटिफाई किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट यूनिट को, जिन्होंने कही फिर इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी बिटवीन जुलाई टू सेप्टेम्बर, और उसमें उन्होंने 17 न सिर्फ स्टोलन गाड़ियां ढूंढी थी जिनको के एक अबंडेंट एरिया में छोड़ दिया गया था यूज करने के बाद। तो उसके बाद फिर लास्ट मंथ जो है वो वारंट्स इशू किए गए थे दो टोरंटो घर के लिए, तो उसकी वजह से वो सीज कर सकी है जो पुलिस है ग्लोब फायर आर्म्स, टू एक्सटेंडेड मैगजीन्स, की फॉब्स, कॉर की प्रोग्रामर्स और 27,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये बस अब पता नहीं चलता है कि ये गाड़ियां वड़ियां रिकवर भी करते हैं, लोगों को भी पकड़ते हैं, मगर आगे क्या होता है उनके साथ कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि गाड़ियां थेफ्ट्स भी और गाड़ियों का चोरी भी उसी तरह से है वो जारी है। बाइडन साहब जो है जी, उन्होंने अपना ट्रिप जो अंगोला को और जर्मनी को कर रहे थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है और अब वो डीसी के अंदर ही रहेंगे और मॉनिटर करेंगे हरिकेन मिल्टन जो आ रहा है फ्लोरिडा में उसके लिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन पियर जो है उन्होंने आज बताया कि जी ये स्टॉर्म जो है बड़ी तेजी से आ रहा है तो इसलिए जो है बाइडन साहब यहीं पर रहेंगे। अब क्लियर नहीं है कि ये इनका ट्रिप जो है रीस्केड्यूल किया जाएगा कि नहीं। बाइडन साहब जो थे वो बर्लिन के अंदर एक्सपेक्टेड थे ऑन थर्सडे टू मीट जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट जो है इनके फ्रैंक वॉल्टर उनके साथ भी मुलाकातें करनी थी और इन्होंने होस्ट करना था एक समिट ऑन यूके वॉर एट यूएस रैमस्टीन एयर बेस के ऊपर। इसके साथ साथ जो जाहिर है कि जर्मनी जो है वो बड़ा अफसोस का इजहार कर रहा है कि बाइडन साहब नहीं आ सकते, लेकिन इसके साथ साथ जर्मनी जो है वो रिकंसिडर कर रहा है तुर्की की जो रिक्वेस्ट आई थी कि वो यूरो फाइटर प्लेन इनसे लेना चाहते थे। पहले तो जर्मनी बड़ा रिलक्टेंट था लेकिन अब जो रीजन का हाल है उसमें तुर्की ने जो ये कहा था कि हम 20 यूरो फाइटर चाहिए एट द प्राइस कॉस्ट ऑफ 5.6 बिलियन यूएस डॉलर्स वो हमको इमीडिएटली चाहिए, तो शायद जर्मनी इसके ऊपर रिकंसिडर कर सकता है। लेकिन अभी भी जर्मनी के अंदर जो ग्रीन पार्टी है इसको बहुत ज्यादा अपोज कर रही है, वो कहती है कि तुर्की को ये हाई एंड वॉर वेपन्स आप मत दें। ये एक रिपोर्ट आई है जी, ये ब्राउन यूनिवर्सिटी का जो वॉटसन इंस्टीट्यूट है उसने लेकर आए हैं वो ये रिपोर्ट और उनके मुताबिक यूएस हैज स्पेंड 22.76 बिलियन टू सपोर्ट इजराइल्स वॉर ऑन गाजा। अब आप सोचें कि अंकल सैम जो ये जो बातें करते हैं जी, हम सीज फायर चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, भाई आप 22 बिलियन डॉलर आप इसराइल को दे रहे हो कि हाँ जी मारो मारो इन्हें गाजा नू खत्म खत्म करो सारा करो, तो ये कैसे चलेगा। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें सिर्फ गाजा का जिक्र नहीं है, हुथीज का भी जिक्र है और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो क्लैरिटी के साथ हम कह सकते हैं वो ये है कि 17.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का मिलिट्री एड इन्होंने दे दिया है एक साल के अंदर जब से ये गाजा वॉर जो है वो शुरू हुई है, विच इज द हाईएस्ट एनुअल टोटल एवर बाय अ यूएस गवर्नमेंट टू एनी एलाय। उन्होंने कहा जी कि जो यूएस का ये जो आर्सेनल जो इन्होंने डिलीवर किया है जिसके के अंदर आर्टिलरी शेल्स थे 907 किलोग्राम्स ऑफ बॉम्ब्स थे ये जो है उन्होंने दिए हैं। उन्होंने साइट किया है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट कि ये सारी की सारी एड जो इसराइल को दे रहे हैं इसको कॉन्स्टेंटली ये कोशिश कर रहे हैं छुपाने की और बहुत सारा ब्यूरोक्रेटिक मेनूवर इसके अंदर शामिल, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल किया है कि ये सारी चीजें छुपाओ जो हम दे रहे हैं इनको इसराइल को। इसराइल जो है वो बिगेस्ट रेसिपिएंट है ऑफ यूएस मिलिट्री एड और अभी तक माय गॉड ये जरा फिगर सुने आप, अभी तक अमेरिका ने 251.2 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वो सिंस 1959 वो इसराइल को दे चुके हैं। पाकिस्तान को कितना चाहिए होता है 5 या 6 बिलियन है पाइजन, 251.2 बिलियन इन्होंने जी इसराइल को दे दिया है, है जी। अच्छा इसमें वो कहते हैं जी कि यूएस ने स्पेंड किए हैं 4.86 बिलियन अगेंस्ट इट्स ऑपरेशंस इन येमन एंड अगेंस्ट इट्स ऑपरेशन इसराइल की ऑपरेशंस इन मिडल ईस्ट, यानी कि ईरान के खिलाफ या के जो है हिजबुल्ला के खिलाफ। और वो इन जुलाई 12 फॉर्मर यूएस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा वार्न किया था बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो यूएस आर्म्स शिपमेंट्स टू इसराइल आप कर रहे हैं ये इसराइल इस सारे के सारे जो ये आर्म्स हैं ये यूज कर रहा है टू डिस्ट्रॉय गाजा एंड पैलेस्टीनियंस, तो रोको आप इसको। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी एक भी बात जो है वो नहीं सुनी है। उन्होंने ये भी कहा था कि यूएस जो है ये जो वेपन्स इसराइल को दे रहा है वो ना सिर्फ किलिंग बल्कि वहां पे जो बीसीज पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है उसको स्टार्व कर रहे हैं, उसको फूड तक लेने नहीं दे रहे हैं, तो आप ये बंद करें अपना मिलिट्री एड। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल नहीं सुना। मई के अंदर बल्कि बाइडन साहब ने कहा कि यूएस जो है फर्मली इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है और कोई भी कंडीशन जो है वो रहेगी तो हमारा यूएस मिलिट्री एड इनको जारी रहेगा। अक्टूबर 4 को उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम अभी जो अक्टूबर 4 गुजरा है 4 दिन पहले उस पर भी उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इसराइल के साथ खड़े हैं और उनको एड हम देते रहेंगे। तो आप सोचो जरा कि ये जुल्म का निजाम जो है फिर खुद अमरीका ही सोच ले कि वो कब तक ये जारी रहेगा। एक तरफ तो आपने खुद जो है गोरे के खिलाफ लड़ी है ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमरीका ने खुद, और दूसरी तरफ दूसरों को वो कहते हैं जी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ेगा वो टेररिस्ट है, तो मतलब हाउ डज इट मैच। अपनी आपकी जो वॉर जो थी फॉर इंडिपेंडेंस वो ठीक थी, लेकिन अगर पैलेस्टीनियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे तो वो टेररिस्ट हैं। वेरी गुड, वाह क्या बात है। पता नहीं कौन से कलर चश्मे आप पहनते हैं अंकल सैम, वो चश्मे मेरे को भी भेजो, वो चश्मे मुझे भी लगाने हैं ताकि मुझे भी वही दिखे जो आपको दिखता है। अच्छा जी, ट्रंप साहब जो है जी, उन्होंने आज एक फिर बहुत बड़ा बयान दे दिया, दुनिया जो है जनता बल्कि भड़क गई है सारी दुनिया में। उन्होंने कहा है ये हजारों की तादाद में ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये जो यहां पे आ रहे हैं अमेरिका में, ये मर्डर कॉन्विक्ट्स हैं और इनके बैड जीन्स हैं और ये अपने बैड जीन्स लेके यूएस के अंदर आ रहे हैं। एक रेडियो को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने जो कमला हैरिस और बाइडन साहब की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उनको बहुत ज्यादा कंडेम किया। उन्होंने कहा कि 13,000 मर्डरर्स जो हैं वो यूएस के ओपन बॉर्डर से हर वक्त आते हैं और यहां पे हैप्पीली यूएस के अंदर रहते हैं और यूएस उनको बड़ा जो है वो अकोमोडेट करता फिरता है। इसके ऊपर जाहिर है कि व्हाइट हाउस ने बेतहाशा कॉन्डेमनेशन शो किया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन पेरे जो है उन्होंने कहा जी ये इस तरह की जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल हेटफुल, डिस्गस्टिंग और इनअप्रोप्रिएट है और इसकी हमारे मुल्क में कोई भी जगह नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के अलावा वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि जो ट्रंप साहब है अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं और जो कोई भी ये इमिग्रेंट्स हैं इनको बहुत ही घटिया किस्म का वो समझते हैं। इसके अलावा अखबार ने कहा कि ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फॉर्मर यूएस अम्बेसडर और पॉलिटिकल एनालिस्ट माइकल मैकफॉल जो हैं उन्होंने कहा जी कि ट्रंप साहब जिस तरह बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह लोग नाजी जर्मनी के अंदर भी बात करते थे। यूएस इमिग्रेशन डाटा जो सितंबर के अंदर शो करता है वो ये दिखाता है कि 13,099 लोग होमिसाइड कन्विक्शंस के साथ आईएस की नॉन डिटेन्ड लिस्ट जो थी उसके ऊपर थे, लेकिन वो फ्री नहीं है अमेरिका में। अगर उनके ऊपर जो मर्डर चार्जेस हैं तो वो फेडरल या स्टेट जेल्स में हैं, वो ऐसे खुला फिर नहीं रहे जिस तरह से बाइडन साहब ने जिस तरह से ट्रंप साहब ने क्लेम किया है। और इसके अलावा जो बाकी के गुंडे बदमाश या मर्डरर्स हैं वो तो सदियां पहले ही अमरीका में आके बस गए थे, तो वो ये नहीं है कि क्यों न्यू इमिग्रेंट्स हैं और वो ये सब कर रहे हैं। तो ये जो है ये सारी बातें इनकी जो क्लेम्स हैं गलत है,
लेकिन ट्रंप साहब जीत जाएंगे। तस्वीर जो हमारी टीवी पर लोग देख रहे हैं, इधर तस्वीर नवदीप आप तस्वीर दिखाएं ट्रंप साहब की, जो लोग टीवी देख रहे हैं
हाँ।
आप देखें ट्रंप साहब की कैप पे क्या लिखा है,
45 and 47
ट्रंप साहब जीत जाएंगे। आप देख रहे हैं जो लोग टीवी पे देख रहे हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा, सही कह रहा हूँ?
नहीं नहीं, ट्रंप साहब हारेंगे,
उनको पता चल गया 45 to 47 कुछ करना है।
अच्छा पाकिस्तान से सीख रहे हैं ये, अब बस ठीक है बिल्कुल, वैसे भी अपनी पिटीशन ये लाहौर हाईकोर्ट में डाल देंगे तो ये जीतेंगे। अच्छा जनाब, आज की जो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जो आज की खबर, अगर आप ट्विटर का ट्रेंड या बाकी भी सोशल मीडिया पे देखें जिसने के धूम मचाई हुई है, अलकायदा के जो फाउंडर थे उसामा बिन लादेन उनके बेटे उमर को आज फ्रांस से डिपोर्ट कर दिया गया है। वो बड़े ही अरसे से फ्रांस में रह रहे थे और पेंटिंग करते थे, नॉर्मंडी के एक विलेज में रहते थे और अपने आप को उन्होंने पेंटर कहा हुआ था और अपनी जो इनकी ब्रिटिश वाइफ है उनके वीजे के ऊपर ये बड़े अरसे से यहां पे जो है उनके साथ, यानी कि वो जो है उनको इजाजत दी हुई थी वो यहां पे रह रहे थे, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने टेररिज्म को अकॉर्डिंग टू फ्रेंच अथॉरिटीज ग्लोरीफाई किया है। इंटीरियर मिनिस्टर ब्रूनो रेटिलो जो है उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल इनको बैन कर रहे हैं, आइंदा ये कभी भी फ्रांस के अंदर एंटर नहीं हो रहे हैं, हम इनको डिपोर्ट कर रहे हैं। अब डिपोर्ट करके किस मुल्क में भेज रहे हैं या डिपोर्टेशन का टाइमिंग क्या है वो इंटीरियर मिनिस्टर ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब ये फ्रांस में और नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जो खबर आज जो है जिसने दुनिया को आज फिर से खासतौर पर यूरोप को बहुत ज्यादा चौंकाया, इन अ वेरी वेरी रेयर अपीयरेंस, आपको पता ही है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो लोग होते हैं ये सामने बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड की MI5 है उसके जो डीजी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं केन मैकेलम, उन्होंने आज सामने आके कहा है कि आईसिस फिर से ब्रिटेन के अंदर टेररिज्म के चार्जेस टेररिज्म बढ़ा रहा है और ये जो है ये बहुत बड़ा दावा जो है उन्होंने किया है। उन्होंने कहा जी कि अलकायदा आईसिस और दाइश जो हैं ये फिर से इंग्लैंड के अंदर फैलते चले जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा, जीशान जरा दिखा दें उसकी केन मैकेलम की तस्वीर दिखा दें प्लीज, तो वो कहते हैं जी कि ये बहुत ज्यादा टेररिज्म जो है ये आईसिस वाले जो हैं इन्होंने रिज्यूम कर लिया है और ये एक्सटॉर्ट कर रहे हैं टेररिज्म इन ब्रिटेन। और उन्होंने कहा जी कि मेरा यही सबसे बड़ा कंसर्न है, 2014 में वो कहते हैं ये सबसे पहले अपीयर हुए थे नॉर्थ वेस्टर्न इराक और ईस्टर्न सीरिया के अंदर और उसके बाद इंग्लैंड के अंदर भी इन्होंने सर उठाना शुरू किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो डेडली मार्च कॉन्सर्ट हुआ था हॉल अटैक इन मॉस्को ये भी एक आईसिस की जो शूट है, ऑफ शूट जो है आईसिस के, उसने ये किया था। इसकी बहुत ज्यादा ब्रूटल कैपेबिलिटीज हैं। और वो कहते हैं जी कि हमारी जो MI5 की जो 1/3 ऑफ जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी लास्ट मंथ, वो इसी तरह के ऑर्गेनाइज्ड ओवरसीज टेररिस्ट ग्रुप से रिलेटेड हैं। अपने इस रेयर अपीयरेंस में इन्होंने ये भी कहा जी कि हम MI5 वाले जो हैं इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए हैं रशिया और ईरान के ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ से भी हमको खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी CRU जो है वो, उसका मिशन ही ये है कि यूके और यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रीट्स हैं उसके ऊपर मेहम क्रिएट करें। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि 750 रशियन डिप्लोमैट्स जो हैं, जिनमें से कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो थे वो स्पाइस थे, उनको हमने जो है अब न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि यूके यूरोपियन यूनियन से जो है एक्सपेल किया है सिंस पुटिन हैज इन्वेडेड यूक्रेन। तो आज उन्होंने बड़ी ही एक हैरोइंग पिक्चर पेश करने की कोशिश की है कि यूरोप के अंदर ये लोग जो हैं टेररिस्ट अटैक्स कर सकते हैं। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर जो है मोहम्मद यूनुस साहब, 84 इयर्स एज है उनकी माशाल्लाह, लेकिन देखें चलते फिरते टूरते बड़े अच्छी सेहत में है। वो कहते हैं जी कि मैं अभी बिल्कुल नेक्स्ट इलेक्शंस का टाइम फ्रेम नहीं दे सकता हूं। आपको पता ही है कि यूनुस साहब को बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर बनाया था आफ्टर स्टूडेंट लेड अपराइजिंग, जिसने के टॉपल किया था फॉर्मर प्रीमियर हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसको अगस्त के अंदर। वो कहते हैं कि हमारे सामने बेतहाशा टेफ चैलेंजेस हैं और हमको जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रिस्टोर करने की जरूरत है। हम इन पोस्ट के ऊपर रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस वक्त तक हम रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे उस वक्त तक इलेक्शंस को करना जो है ठीक नहीं है। इलेक्शंस करना कोई मुश्किल नहीं है, हम कल इलेक्शंस कर सकते हैं, मगर ये ठीक नहीं रहेगा। हसीना साहिबा की जो 15-year रूल था उसके अंदर वाइड स्प्रेड एलिजली ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस सामने आए थे, मैस डिटेंशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स, और जिसका के जिक्र जो है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी किया था। तो उन्होंने कहा था जी कि रिफॉर्म्स का ये मतलब रहेगा कि नेक्स्ट टाइम जब कोई इलेक्शंस होते हैं या कि कोई पावर में आता है तो वो सब कुछ रिपीट ना करे जो कि शेख हसीना वाजिद ने किया था व्हेन शी वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे। जी ओपन माइक कैफे जो है उसमें बड़े टेस्टी किस्म के वो कहते हैं जी खाने होते हैं, आप हमारे पास तशरीफ ले आओ एक दफा तो फिर एंजॉय द मजा लो। 1310 डेनलेस स्ट्रीट पे ये लोकेटेड हैं। देयर नंबर इज 416-526-6800 और जनाब डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा यहां पे होती हैं डॉक्टर नाजिया रहमान साहिबा। बड़ी जबरदस्त किस्म के जो हैं वो दांतों के हर तरह के आपको सर्विसेज देती हैं। अगर आपको और भी ज्यादा इनसे जानकारी चाहिए कि हम कैसे कैसे जो हैं अच्छी सुविधाएं आपसे ले सकते हैं तो आप इनको कॉल कर लें 9058721100। और अगर उमरा के पैकेजेस चाहिए तो अल हबीब ट्रेवल्स को आप कॉल करें 9055547786 पे। बड़े जबरदस्त किस्म के इनके अच्छे पैकेजेस हैं। तो आप जो है ये शुरू हो रहे हैं 9th अक्टूबर से 20th अक्टूबर के बीच में, तो आप इनको कॉल करें और इन स्पेशल प्राइसेस का आप फायदा उठाएं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर ये जो कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिसको के प्रपोज किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, इसको चैलेंज किया गया है आज एक पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी कि सेंटर जो है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स लाना चाहती है, इसके अंदर मेजर चेंजेस आएंगी पाकिस्तान की जुडिशरी में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जो कि हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ हैं, खासतौर पर PTI। पिटीशनर जो है उसने रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इन अमेंडमेंट्स को, जिसमें कि डिक्लेयर किया गया है कि CJP जो है उसका टेन्योर जो है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहें क्योंकि ये वायलेट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 179 जो एस्टैब्लिश करता है कि जजेस के जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो डिक्लेयर उसको किया गया, उसको डिक्लेयर किया जाए एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड। इसके अलावा उन्होंने कहा जी स्ट्राइक डाउन करें एनी अटेम्प्ट बाय एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बेंचेस टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको अंडरमाइन करेगा। दो कोर्ट्स ऑफ पैरेलल कैसे चलाएंगे? इसमें उन्होंने कहा जी कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो अंडरमाइन करेंगी इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशरी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए डोर्स ओपन करेंगी और पब्लिक कॉन्फिडेंस जो जुडिशियल सिस्टम में है उसको भी ये खराब करेंगी। इमरान खान साहब जो हैं जी उन्होंने एक अर्जेंट फाइल जो है किया है अपील यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रिपोर्टर को ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंड लॉयर्स, जिसमें कि ये जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके खिलाफ उन्होंने बात की है जो कि अभी जो है इसी वीक में पार्लियामेंट के अंदर लाई जाएगी। अकॉर्डिंग टू यूके वेबसाइट प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज जो फाइल ये जो उन्होंने की है उसमें अपील्स जो उन्होंने डाली हैं इनको मार्गरेट सेटर वेट को, जो कि यूएन स्पेशल रेपोर्टर हैं, ये उन्होंने फाइल किए हैं थ्रू ब्रिटिश लॉयर्स एडवर्ड फिट्ज़जेराल्ड केसी, टेटियाना ईटवेल, जेनिफर रॉबिन्सन, और जिनको के इंस्ट्रक्ट किया है इमरान खान साहब की फैमिली ने कि फॉरन आप एंगेज करें यूनाइटेड नेशंस के साथ और इंटरनेशनल एडवोकेसी करें इसके ऊपर. अपील जो है वो ये कहती है कि ये जो प्रोपोज 26 अमेंडमेंट टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन है ये सीरियस थ्रेट पोज करता है टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग हिम एंड हिज सपोर्टर्स. उसमें उन्होंने अलेज किया कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग इम्प्यूनिटी जो है उसको और भी ज्यादा जोर देंगे फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, और जो कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस वाले करते हैं लोगों के खिलाफ. तो इस सब चीज के खिलाफ इन्होंने जनाब जो है ये पिटीशन डाली है. 9 लोग इंक्लूडिंग एक औरत जो है उसको डिटेन किया गया है एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इन डेडली ब्लास्ट जिसके अंदर 3 लोगों की डेथ हुई थी इंक्लूडिंग 2 चाइनीज नियर कराची एयरपोर्ट. इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ने यह आज बताया है. उन्होंने कहा जी कि जियो फेंसिंग एरिया की कंप्लीट हो गई है और जो एविडेंस ब्लास्ट के साइट पर मिली है उसको फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है. ये जो सुइसाइड अटैक जो था जिसको के फॉरन ऑफिस सुइसाइड अटैक कह रहा है, वो कह रहे हैं जी कि इसका हमने जैसे कि आपको कल भी बताया था आउटलॉ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है मजीद ब्रिगेड उसने इसका जो है जिम्मेदारी लिया था. जो चाइनीज एम्बेसी है उसने भी कंफर्म किया कि जो कॉन्वॉय था फ्रॉम पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर को इसको एयरपोर्ट के करीब अटैक किया था जिसमें कि 2 चाइनीज की डेथ हुई थी. पुलिस कहती है जो डाटा हमने लिया है वो 6 सस्पिशियस उसमें सेल फोन नंबर जो है वो हमने ऑब्टेन किए हैं और अब उससे डाटा जो है हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा जो टेररिस्ट था मेन टेररिस्ट जो था उसके पास मोबाइल फोन नहीं था एट द टाइम ऑफ अटैक, लेकिन हमने जो है वो जो व्हीकल का रूट था वो फाइंड आउट कर लिया कि किस रूट से गया. वो कहते हैं जी कि ये जो अटैकर था ये एयरपोर्ट का चक्कर लगा के गया था ब्लास्ट से पहले. तो भाई जान तुम सो रहे सो उस वेले तो उस वेले जाग नहीं आई. ये इमरान खान और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब उनके खिलाफ अटेम्प्टेड मर्डर के जो केसेस हैं वो कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर डाले गए हैं क्योंकि उसके अंदर जो कैपिटल सिटी का जो एक कॉप है उसकी डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ द इंजरीज ही सस्टेन ड्यूरिंग द अलेज्ड वायलेंस ड्यूरिंग पीटीआईज प्रोटेस्ट इन इस्लामाबाद. एफआईआर जो दर्ज की गई है ऑन बिहाफ ऑफ इस्लामाबाद नून पुलिस स्टेशन अंडर 12 सेक्शंस अटेम्प्टेड मर्डर आर्सन अटैक ऑन स्टेट वायलेंस अगेंस्ट पुलिस एंटी टेररिज्म एक्ट, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इन लोगों ने कंस्पायर किया जिसकी वजह से वो पुलिस वाला मरा है. आजम सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर अली सैफ, पीटीआई इस्लामाबाद प्रेसिडेंट आमिर मुगल, मलिक हफीजुर रहमान, टीपू, 400 अदर जो अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ भी केसेस जो हैं वो डाले गए हैं. इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद साहब जो हैं उनके ऊपर वो कहते हैं जी कि पीटीआई के मिस्क्रियंट्स ने अटैक किया था डी चौक के ऊपर जब वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे एट चुंगी नंबर 26 ऑन जीटी रोड ऑन अक्टूबर 4 और इन्होंने उसको पकड़ के टॉर्चर किया अपने जो है लीडर्स के कहने पे जिसके अंदर इमरान खान और गंडापुर साहब जो हैं वो शामिल हैं. उन्होंने कहा जी कि उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक्स किए विद स्टिक्स, स्टोन्स एंड आयरन रॉड्स और ये पुलिस वालों के यूनिफॉर्म्स जो हैं वो भी फाड़े और पुलिस वालों के ऊपर आग लगाई, उनके ऊपर जो है टीयर गैस मारी और उनको इंजर किया और इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको भी आग लगाई. इन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है नारे भी लगाए और वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब और 105 अदर्स जो हैं उनको दूसरे और केसेस के अंदर भी नॉमिनेट किया गया है जो कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो दे आर रिलेटेड टू अक्टूबर 6. तो पाइजन कितने केसेस और डालोगे. एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है इस्लामाबाद उसने ग्रांट किया है पुलिस को 2 मोर डेज फॉर फिजिकल रिमांड ऑफ इमरान खान सिस्टर्स अलीमा एंड उज्मा खानम और उन्होंने जो केस कहा है एक्सक्यूज मी ये केस जो है लिखा गया है ऑफ वायलेंस बाय कोहसार पुलिस. एटीसी के जो जज हैं ताहिर अब्बास सिप्रा उन्होंने 1 दिन का फिजिकल रिमांड दिया था जब पुलिस ने इनको अपनी कस्टडी में लिया था. आज दोनों बहनें जो हैं कोर्ट के सामने हाजिर हुई थी. जज अब्दुल हसनाद मोहम्मद जुल्करनैन जो है इनका केस सुन रहे थे. प्रोसिक्यूटर जो है राजा नवीद उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट है कि 10 दिन का इनका फिजिकल रिमांड जो है वो दिया जाए क्योंकि इन्होंने पीटीआई के वर्कर्स को एनकरेज किया कि ये जो है वो प्रोटेस्ट करें और वायलेंस करें अपने मेगाफोन के थ्रू. मेगाफोन जो है वो हमने रिकवर कर लिया लेकिन हम बहनों को कहते हैं कि अपने मोबाइल फोन्स भी हमको दें जिसमें कि इसमें इन्होंने वीडियोस बनाई हुई है, इन्होंने लोगों को प्रोवोक किया, इन्होंने एक प्लान बनाया और कॉन्स्पिरेसी स्टेट के अगेंस्ट की। बहने जो हैं उनके जो लॉयर्स हैं फैसल फरीद चौधरी, नियाजुल्ला नियाजी और अली बुखारी, वो रिप्रेजेंट जो इनको कर रहे हैं, उन्होंने आज जब हियरिंग शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी कि इन के दोनों के अलीमा बीबी और उज्मा खानम के मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं किए गए हैं और फैमिली को बिला वजह, चूंकि ये इमरान खान की बहनें हैं तो इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, जैसे उनको उनकी बीवी को और उनके नेफ्यू को जेल में डाला हुआ है। नियाजुल्ला साहब ने कहा कि जी जिस वक्त ये अरेस्ट इनको किया उस वक्त ये कुछ भी नहीं कर रही थी, इनको इलीगली डिटेन किया गया है और ये सिर्फ नारे लगा रही थी। ये किस दिन हुआ कि पाकिस्तान के अंदर नारा लगाना जो है वो एक क्राइम बन गया है। इसके ऊपर बात करते हुए जो तीसरे लॉयर थे बुखारी साहब, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की बहनों को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया कि वो इमरान खान की बहनें हैं और उनको वो विक्टिमाइज करना चाहते हैं, पॉलिटिकल रिवेंज है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। खुश हो भाईजान, तुसी खुश हो? यानी हमने नहीं कभी देखा था ये इस टाइप की सियासत मुल्क में। बड़ी सियासत हम भी देख कर आए हैं वहां पर, डिक्टेटर्स के जमाने में, मुशर्रफ साहब के जमाने में बड़ा बुरा लोग कहते थे डिक्टेटर है, ये किया वो किया फलाना किया, हमने कभी नहीं देखा कि कभी उसने कहा होगा किसी की मां बहन बेटी को उठा लो। पता नहीं, ये शायद किया होगा तो हमें नहीं पता चला, मगर हम, मैं तो अखबार में काम करती थी, मैंने कभी ऐसे सुना नहीं कि जो है उनकी तरफ से, मुशर्रफ साहब की तरफ से कभी कोई ऐसे ऑर्डर आया हो। बहर क्या कर सकते हैं, हर बंदा डिफरेंट है ना जी। मैं अच्छी हाँ, आमिर बुरा है, उनकी कर सकते हो सर, हर बंदा डिफरेंट होता है। अच्छा जी, हिंदुस्तान के अंदर जो हरियाणा के जो पोल के इलेक्शंस हैं वो आ गए हैं और आज इसने दुनिया को फिर से एक दफा हैरान कर दिया। जितने एग्जिट पोल्स थे उनकी ऐसी तैसी फेर दी, क्योंकि बीजेपी ने थर्ड हिस्टोरिक टाइम जो है यहां पे इलेक्शंस जीते हैं। हालांकि 10 साल का जो इनका रूल चल रहा था उसमें लोग जो थे काफी नाराज थे, जैसे कि जो दलित थे और जो जाट थे और जो फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे, लेकिन इसके बावजूद भी 90 असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये जो हरियाणा का जो इलाका है इसमें 48 सीट्स जो हैं बीजेपी ने जीती हैं और अब ये गवर्नमेंट जो है यहां पे फॉर्म करेंगे। 2019 में इन्होंने 40 सीटें जीती थी, तो यानी 2019 से भी ज्यादा जीती हैं। कांग्रेस ने यहां पे 37 सीट जीती हैं, 7 मोर फ्रॉम 2019। जरा कांग्रेस ने अच्छा किया इस दफा। कांग्रेस के लीडर्स जो हैं उन्होंने जो है वो इसके ऊपर काफी जाहिर है कि शोरवोर मचाया। उन्होंने कहा जी कि ईवीएम मशीन्स ठीक नहीं थी और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो ईसी जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको कहा कि तुमने अपने वेबसाइट के ऊपर 9 बजे के बजाय 11 बजे के बाद जो है रिजल्ट्स क्यों डाले हैं। तो ये क्या हेर फेर वहां पे जो है वो चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये सारे इल फाउंडेड हैं, ये इसमें से कोई भी बात जो है ठीक नहीं है। और बीजेपी जो है उसने काफी डेंट किया है। कांग्रेस के जो जाट लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुडा का जो फोर्ट्रेस था पानीपत और सोनीपत, वहां तक भी ये जीते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे जाट डोमिनेटेड एरियाज थे हिसार और जिंद के डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे भी बीजेपी जो है वो जीती है। तो बीजेपी जनाब काफी मैसिवली जीती है हरियाणा में और इसके लिए वो फिर से यहां पे गवर्नमेंट बनाएंगे। अलबत्ता इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पे इंडिया ब्लॉक जो है वो जीता है। वहां पे जो आंकड़े आ रहे थे एग्जिट पोल्स के वो बिल्कुल ठीक निकले हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन डेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी जो है बन के सामने आई है। 90 असेंबली का जो सीट्स हैं उसमें से 42 सीट्स उन्होंने जीती हैं। कांग्रेस फिर से जम्मू जो है वहां पे अपना खाता नहीं खोल सकी। कश्मीर के अंदर अलबत्ता उन्होंने 6 सीटें जो है वो जीती हैं। अलायंस जो है वो कंफर्टेबली उनके पास 48 सीट्स की अब मेजोरिटी है। बीजेपी जो है वो सिर्फ 29 सीट्स जीत सकी। आईएनसी 6, जेके जम्मू और कश्मीर की जो पीडीपी है वो 3, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने 1-1 सीट जीती है। 7 सीट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती हैं। जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो जो हैं अगर यहां पे लोगों के पास क्लियर मेजोरिटी ना आती तो वो फौरन अनाउंस कर देते कि बीजेपी फिर से गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा पीडीपी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कश्मीर के अंदर सिर्फ 3 ही सीटें जीत चुकी, क्योंकि जाहिर है कि बड़ी लोग इनसे बड़े खफा थे क्योंकि उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस बनाया था। यहां तक कि जो महमूदा मुफ्ती साहिबा की जो बेटी है इल्तजा मुफ्ती, उन्होंने भी अपनी सीट जो थी वो शी लॉस्ट टू एनसी के जो बशीर अहमद साहब थे उसको अपनी सीट लूज की। एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा जी कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर है वो उमर अब्दुल्ला होएगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम ये जो यूनियन टेरिटोरीज को बना दिया गया है और वो जो रिवोक कर दिया गया था आर्टिकल 370 उसको फिर से हम रिस्टोर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस और एनसी को मिलकर काम करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अकाउंटेबिलिटी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो भी कोई जम्मू और कश्मीर का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनता है, हालांकि इनके वालिद साहब ने तो कह ही दिया कि ये बनेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी कि जो कोई भी है उसको बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप जो है सेंटर के साथ रखना पड़ेगा, अगर न रखा तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगी इसकी। नहीं नहीं ये उन्होंने नहीं कहा। अच्छा जी, अच्छा जनाब, संजय लीला भंसाली साहब जो हैं उन्होंने आज बड़ी रेवलेशंस की हैं आलिया भट्ट के बारे में। उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट की जब इंशाल्लाह जो मेरे साथ होने वाली थी मूवी, जिस वक्त उसको हमने शेल्फ किया तो आलिया भट्ट बहुत ज्यादा रोई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। और फिर मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा कि तू इससे भी बड़ा रोल प्ले कर रही है, तू अब गंगूबाई का रोल प्ले करेगी। तो वो रोने लग गई और उसने कहा जी कि पहले तो मैं लॉस एंजलिस में जाके तुम्हारा ये बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर इंशाल्लाह प्ले कर रही थी, अब मैं कमाठीपुरा में जाऊंगी तो ये कैसे चलेगा, मुझे नहीं पता ये कैरेक्टर कैसे मैं करूंगी। तो मैंने आलिया भट्ट को कहा कि तुम मेरे पे ट्रस्ट करती हो, तो उसने कहा यस। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूं कि तुम एक स्ट्रांग वुमन का रोल कर सकती हो, मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को समझता हूं, तो इसलिए नरेज मिथ अगर इंशाल्लाह को हमने शेल्फ कर दिया है। जावेद अख्तर साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं अपने बच्चों जोया अख्तर और फरहान अख्तर के बारे में। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जी कि मेरे बच्चे जो हैं मेरी अपनी कहानियां जो मैं लिखता हूं उसको आउटडेटेड और ट्रेडिशनल मानते हैं और बड़ा इजीली मेरे बॉस बन जाते हैं। दूसरे लोग तो मेरे से बात करते हुए हिचकिचाते हैं क्योंकि मैं सीनियर हूं, लेकिन मेरे बच्चे इस चीज को कंसिडर नहीं करते। वो कहते हैं फरहान तो अच्छा बच्चा है, वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता लेकिन रिजेक्ट कर देता है मेरी लिखी हुई लाइनों को। जोया जो है वो मेरे से फाइट करना शुरू कर देती है। उसकी वजह यह है कि इनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, ये तो ड्रीम भी अंग्रेजी में करते हैं, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो मैं उर्दू की नजाकत को समझ सकता हूं। मैं 25 साल से स्क्रिप्ट लिख रहा हूं लेकिन मैंने सिर्फ 25 साल में एक स्क्रिप्ट लिखा है फरहान के लिए लक्षिया का, और कुछ डायलॉग्स मैंने सिर्फ लिखे हैं जो जोया की पहली फिल्म थी लकी बाय चांस, क्योंकि उसने मुझे खुद ही कहा कि आप कैरेक्टर्स को अच्छे से समझती हो। कहते हैं जी वो दिन और आज का दिन जोया ने मुझसे उसके बाद कभी डायलॉग्स नहीं लिखवाए। ऐसे है। और जनाब एमरान हैशमी साहब जो हैं उनकी जो आने वाली फिल्म है गोदाचरी 2 हैदराबाद में उसकी वो कर रहे थे शूटिंग, जिसके के अंदर एक एक्शन सीन में वो बहुत ज्यादा जो है वो जख्मी हो गए हैं, उनके नेक के ऊपर एक कट आया है और वो जल्द ही मुंबई वापस आने वाले हैं। प्रोड्यूसर टीजी विश्वा प्रसाद जो हैं उन्होंने अलबत्ता उनकी बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा जी कि इनके G2 के अंदर आने से जो है बहुत ज्यादा जो प्रोजेक्ट है वो ऊपर चला गया है। कैसे गया अभी हम आपको क्या बताएं। और वो कहते हैं जी कि लोग जो है सिनेमैटिक स्पेक्टिकल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने कहा जी कि ये जो मोस्ट अवेटेड स्पाई फ्रेंचाइज है उसके लिए हम बड़े एक्साइटेड हैं और खासतौर पे इमरान हाशमी का जो एडिशन है वो बड़ा ज्यादा जो है फ्रेंचाइज को जबरदस्त एक